أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی تو سب سے پہلے ان کے دیل کے والد کے لیے پانچ مرتبہ ہم آیت پڑھ لیتے ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد کل رات گئے ویسے دو دن پہلے ہارٹ اٹیک جی کوشچن ہے آپ کا جی بولیں اس میں مجھے دو تین باتیں تو کلیئر کرنی ہیں پچھلے اس میں یا تو دیکھیں میں کلیئر کرتا ہوں ہو سکتا ہے اس میں آپ کی بات ہو جائے اگر نہ ہو تو پھر اگر نہ ہو تو پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے جی تو پہلا تو یہ تھا کہ جب ہم توبہ کی بات کرتے ہیں اور توبہ میں عام طور سے ایک جب گفتگو ہوتی ہے کہ یعنی انسان بندوں کے حقوق اور بندوں کی زیادتی اس کا بہت خاص خیال رکھے کہ اپنی زندگی میں کسی انسان کے ساتھ زیادتی نہ ہو کسی کو تکلیف نہ دیں کسی کو اذیت نہ دیں تو اس سے بعض اوقات ہم لوگ ایک عمومی نتیجہ بھی برآمد کر لیتے ہیں ایک جنرل کنکلوژن کہ اللہ تو خالق ہے اور مالک ہے اور وہ اپنے گناہوں کو معاف کر دے گا اور غلطیوں کو معاف کر دے گا بخش دے گا لیکن حقوق العباد جو ہے وہ ہمیں یا تو بخشوانے ہیں یا جیسے میں خیال میں نے بھی کہا تھا نا کہ انتقال سے پہلے جو بھی ہے اس سے لوگوں سے کریں بات کریں معافی مانگیں پوری کوشش کریں تو اس سے مجھے یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں ہم بھی اسی ڈائریکشن میں نہ چلے جائیں کہ جو عام طور سے ہمارے یہاں گفتگو ہوتی ہے کہ اللہ تو معاف کر دے گا بندوں سے آپ معاف کرا کے دیں ٹھیک ہے اس میں یہ اصولی طور پر یہ چیز بالکل غلط ہے یعنی انسان اگر نافرمانی اور گناہ اور معصیت کا لحاظ کرے تو بندوں سے کہیں زیادہ خدا کا خیال رکھنا اگر واقعاً ایک انسان مسلمان ہے مومن ہے تو بندوں کی کا گناہ کرنے سے کہیں زیادہ اہم اس بات کا ہے کہ انسان خدا کی معصیت نہ کرے اور الٹیمیٹلی یعنی کہ اس کا پہلا ریزن تو یہی ہے کہ خدا کی معصیت ہی ہے کہ جو انسان کو باقی ہر ایک کے ساتھ زیادتی کرنے کی طرف لے جاتی ہے اور اگر ایک انسان حقیقتاً خدا کا فرما بردار رہے گا اور خدا کی اطاعت اور خدا کی رضا کی کوشش کرے گا تو وہ یقیناً کسی اور کے ساتھ نہ ظلم کرے گا نہ زیادتی کرے گا یہ تو پہلی ایک بات ہے لیکن دوسرا یہ کہ اس کی جو اہمیت بعض اوقات کم کر دی جاتی ہے اور بہت سارے لوگ ہمارے یہاں مسلمانوں میں اس بات پہ باقاعدہ بلیف رکھتے ہیں کہ لوگوں کا گناہ نہیں کرنا ہاں خدا کے ساتھ چل جائے گا نماز ادھر ادھر کر دو روزوں میں ڈنڈی مار دو کچھ اس قسم کے کام کر دو یا عبادات وہ کر دو چلو چل جائے گی لیکن بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرو تو اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال میرے ذہن میں آئی تھی کہ آپ بتائیں کہ یہ مثال جو ہے وہ اس پہ پوری اترتی ہے کہ نہیں اگر ہم دنیا کی زندگی میں دیکھیں یعنی اللہ رسول امام کو ہٹا کے تو انسان پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے اس کے کس کا حق ہے اس کے نہیں خدا رسول امام ہٹا دیں آپ دنیا میں آ جائیں والدین کا حق ٹھیک ہے اب انسان یہ کہے کہ جو میرے والدین ہیں وہ بہت مہربان ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ مہربان کون ہے انسان پر والدین تو اب ہم اس بات کا یہ نتیجہ برآمد کریں کہ کیونکہ والدین بہت مہربان ہیں لہذا والدین کے ساتھ جو چاہو گڑبڑ کر دو باقی سب کا پورا خیال رکھو ये जिंदगी में कोई अच्छा कंक्लूजन है? ये कोई यानी एक जिसे कह लें एक सही, एक दयानतदार, एक सही इंसान की बात है ये कि क्योंकि वालिदैन बहुत मेहरबान हैं, क्योंकि वालिदैन मेरी गलतियों से दरगुजर करते हैं, क्योंकि वालिदैन मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, तो उसका नतीजा मैंने ये निकाला कि वालिदैन के साथ जो गड़बड़ सड़बड़ कर जाऊं, गुनाह मासियत कर जाऊं, तो कोई बात नहीं, वो तो माफ़ी कर देंगे, बाकियों का ख्याल रखना चाहिए, वो माफ़ नहीं करेंगे। तो ऐसी नहीं, तो यहाँ भी तो यही हो रहा है ना कि वालिदैन के साथ अगर हम बदतमीजी करते हैं नऊज़ु बिल्लाह, तो वालिदैन कुछ नहीं कह रहे, नहीं मिल रही सजा आपको, लेकिन दूसरे इंसान के साथ हम बदतमीजी करते हैं, वो गरेबान पकड़ लेता है। तो क्या ये इस बात की दलील बन रही है कि वालिदैन के साथ जो दिल चाहे करो या उनके हकूक को आगे पीछे करो? बल्कि जो असल चीज हो रही है वो उल्टी हो रही है, यानी इसके बरक्स नतीजा बरामद हो रहा है कि जो आप पर ज्यादा मेहरबान है आपको सबसे ज्यादा उसकी फर्माबरदारी करनी चाहिए, है ना। यानी कि जो इंसान भी एक मेयार रखता है वो क्या करता है, वो अपने वालिदैन की फर्माबरदारी इसलिए नहीं करता कि ये वालिदैन मुझे कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये बात है या नहीं, कि वालिदैन की मोहब्बत खुद इस बात की वजह बनती है कि आप उनकी इताअत और फर्माबरदारी करें। तो यही चीज बदरजे हतम खुदा के लिए, ने इसको आप बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर दें तो ये बात खुदा के लिए सही, ठीक है। तो ये नतीजा कोई ना निकाले कि जब हम ये बात कह रहे हैं कि आप लोगों के ख्याल रखें या लोगों के साथ मामलात अपने सही करें, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसान खुदा के मामलात के साथ लापरवाह हो जाए या बेपरवाह हो जाए, बल्कि आइमा अलैहिस्सलाम ने इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि अगर तुम अपने और खुदा के ताल्लुकात को सीधे कर लोगे, सही कर लोगे, तो खुदा तुम्हारे बाकी सारे ताल्लुकात को सही कर देगा। तो ये एक बात थी जो मुझे महसूस हो रहा था कि ये पहलू ज़रा तशना रह गया था कि कहीं वो उस तरफ दिमाग ना चले जाए, क्योंकि वो जुमले जो हैं वो हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं कि हुकूक़ वाले बात का आप ख्याल कर लीजिए, हुकूक़ अल्लाह अपने हुकूक़ माफ़ कर सकता है या कर देगा, तो वो माफ़ करे ना करे, लेकिन हम अगर उस उसूल पे चल रहे हैं अपनी आखिरत को लेके कि आखिरत में फलाह दर हकीकत नफ्स की सूरत का नाम है, ठीक है, यानी नफ्स की क्वालिटी आखिरत की कामयाबी या नाकामी है। हम अगर इस नज़रिए को कबूल कर रहे हैं और हम इस बात को नहीं मान रहे कि आखिरत जो है उसका मतलब ये नहीं है कोई डेबिट क्रेडिट अकाउंट में नहीं होना है, तो ये नफ्स की अच्छी हालत नहीं बन रही है कि अगर नफ्स अपने हकीकी इनाम देने वाले को, हकीकी नेमत देने वाले को डाउन कर दे, उसको पीछे कर दे, पसे पुश डाल दे, सिर्फ इसलिए कि वो मेहरबान है, तो ये नफ्स की कतन कोई अच्छी हालत नहीं है। तो अब वैसा नफ्स माफ होने के बावजूद भी जन्नत का कौन सा दर्जा पाएगा मुझे नहीं पता, ठीक है। एक ये बात थी, दूसरी बात ये थी कि वो जो वाकया हमने बयान किया था, जाहिर है कि वो बहुत एक कहने के कई लिहाज से एक टफ वाकया था उसको समझना या सोचना, तो उस पर एक अच्छी खासी एनालिसिस की ज़रूरत है, ठीक है। वो जो कफन चोर वाला जो वाकया था, तो उसमें कुछ चीज़ें जो बात करनी है, जिसमें पहली बात ये है कि जो सबसे पहला उसमें नुक्ता था वो ये था कि असल इंसान की जो चीज़ उसको जहन्नम से भी बाहर निकालने वाली है, और इस किस्म के इशारे दुआए कुमैल में भी मौजूद हैं, वो उसकी मारिफत तौहीद है। दुआए कुमैल के अंदर इस किस्म के जुमले हैं ना कि अगर तूने मुझे उनके साथ बंद कर दिया तो मैं वहाँ भी पुकार पुकार के बताऊँगा कि मैं तुझसे मोहब्बत करता था और ये सब। तो यानी इसका मतलब है कि वो जो मारिफत तौहीद है, जो तौहीद की एक कनेक्शन है, जो जड़ है, वो इंसान को जहन्नम से भी बाहर निकाल लेती है। पहली ये बात थी कि क्योंकि वो शख्स जो था वो बहरहाल कुछ भी था, لیکن اس کی نظر میں خدا اور توحید اور خدا کی عظمت اور خدا کا مقام اور وہ سب چیزیں اپنی جگہ انٹیکٹ تھیں. ٹھیک ہے, یہ ایک پہلی بات, پہلا نقطہ تھا کہ یہ چیز اگر انسان اپنی مضبوط کر لے انشاءاللہ تو یہ زندگی کے ہر اندھیرے میں روشنی ہے. دوسرا یہ کہ اس شخص نے ایک گناہ کبیرہ کو انجام دینے کی نیت کے ساتھ حرکت نہیں کی تھی. ٹھیک ہے, وہ اس یہ نیت کر کے نہیں چلا تھا گھر سے کہ میں یہ کام کروں گا, بلکہ ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ وہ مغلوب ہوا ان کے شہوات کے اس سے حملے سے اور اس سے یہ قبیح فعل سرزد ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس کا امپیکٹ اور ہے, اور وہ جو باقاعدہ عمدن نیتن ایک غلط کام اور گناہ کبیرہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا امپیکٹ الگ ہے. اس قسم کے لوگوں کو توفیق توبہ ملنا بہت مشکل کام ہے, یعنی جو واقع نیت بنا کے جاتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں اور گناہ کبیرہ انجام دیتے ہیں. دوسری بات یہ تھی. ٹھیک ہے, تیسرا پہلو جو تھا وہ یہ تھا کہ جو سورہ آل عمران کی آیت میں ہے کہ والذینہ, جو آیت آئی پھر اسی شخص کے لیے جو تھی کہ والذینہ اذا فعلوا فاحشتا ولم یصروا علی ما فعلوا, کہ وہ لوگ جو فاحش عمل انجام دیتے ہیں اور پھر جو کچھ انہوں نے فیل کیا اس پر اصرار نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اصرار کا مطلب ہے کہ اس پر وہ نہیں کہ میں نے صحیح کیا اور اس کی تاویل توجیہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے صحیح ثابت کر دیں, یہ نہیں, بلکہ اس نے سیدھا سیدھا اپنے لیے گناہ کبیرہ کے ارتکاب کا اقرار کیا اور اس جرم کو اپنے گردن میں ڈال لیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ جو آیت ہے سورہ اس میں یہ بہت خاص بات ہے کہ وہ لوگ جو فاحش عمل انجام دیں اور اس کے بعد اس پر اصرار نہ کریں کہ جو انہوں نے کام کیا اور خدا سے مغفرت مانگے, تو پھر تو یہ تیسری کوالٹی اس شخص کے اندر تھی. ہاں, یعنی کہ ایک گناہ انسان نے کیا, غلط کام کیا, اب اس کو مختلف تاویلیں توجیہات کہ نہیں یہ ایسے ہو گیا یہ ویسے ہو گیا, اس شخص نے ایسا بالکل نہیں کیا. ٹھیک, یہ تیسری بات تھی کہ کوئی اصرار نہیں تھا. چوتھی بات تھی کہ جو انسان کی معرفت اور ایمان کامل ہوتا ہے حقیقتاً, اور یہ نقطہ بھی اسی واقعے میں موجود ہے کہ انسان کی معرفت اور ایمان کا کمال فقط توحید سے نہیں ہے بلکہ توحید کے ساتھ ولایت سے. ٹھیک ہے, یعنی اگر انسان ولایت کی معرفت نہیں رکھتا تو بہت زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ توحید کے نام پر وہ دھوکہ کھا رہا ہے. اگر انسان ولایت حق کا شعور نہیں رکھتا, اگر انسان ولایت حق سے وابستہ نہیں ہے, یعنی ولایت حق کیا ہے, حبل اللہ, وہ رسی جو خدا نے خود ہمارے درمیان لٹکائی ہے. ٹھیک ہے, اور ہم سے اس بات کو وہ مانگا ہے کہ اس سے احتسام کرو, واعتصموا بحبل اللہ جميعا. ٹھیک ہے, تو یہ اور بہت اہم نقطہ ہے کہ توحید کا مطلب یہ نہیں کہ خالی بس ہم ایک فکٹیشس جیسے وہابی اور اس قسم کے افراد جو بات کر رہے ہوتے ہیں. توحید کامل ہی ہوتی ہے ولایت کے وسیلے سے, توحید صحیح جگہ پر ہی آتی ہے ولایت کے وسیلے سے. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ کو یاد ہو جو میں نے بتایا تھا کہ جرنی کیسے شروع ہوتا ہے, شعور توحید یہ بگننگ ہے, شعور توحید ببنیاد فطرت, یعنی انسان کی فطرت و فطری ہدایت اس کو توحید کا شعور دیتی ہے, نہ کہ علم. وہ شعور اس کو لے کے جاتا ہے نمائندہ حق کے پاس, یعنی ولی حق کے پاس, ولی خدا کے پاس. ولی حق اس کو توحید کی معرفت اور علم عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سائیکل بنتی ہے. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں خالی امام اور پیغمبر کے پاس چلا جاؤں اس حالت میں کہ مجھے توحید کا کچھ پتہ ذرا ہی نہیں ہے, اس سے بھی کچھ نہیں ہونے والا. اور وہ انسان جو یہ کہے کہ ہاں میں توحید خود ہی جان لوں گا, خود ہی سمجھ لوں گا بغیر نمائندہ خدا کے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی بات کہاں سے شروع ہوتی ہے, فطرت بیدار ہو, ہدایت فطری روشن ہو, وہ آپ کو توحید کی طرف متوجہ کرے کہ ایک نظام ہے, نظام حق ہے, اس نظام کا کوئی مدبر ہے, اس نظام کا کوئی مالک ہے, और फिर आप उसकी तलाश में निकलें कि उसका पता कहाँ से मिलेगा, कहाँ से उसका मैं सुराग लगा सकता हूँ, वो चीज़ आपको ले जाएगी नुमाइंदा हक के पास, और वो फिर आपको हकीकतन मारिफत और इल्म अता करेगा, आपके शऊर को बुलंद कर देगा। ठीक है, तो उस शख्स के पास ये वाली मारिफत कामिल थी और उसने इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ये फैसला नहीं किया कि मैं अपने घर पे बैठ के गुनाह की माफ़ी मांगूंगा। ठीक है, ये बहुत अहम बात है, बल्कि वो अपने गुनाह की तौबा और मगफिरत के लिए दरे रिसालत पर, यानी दरे विलायत पर आया। ठीक, और ये चीज कुरान करीम में खुद मौजूद है सूरह निसा की आयतों में कि जो भी इनको मसला हो, जो वहां इज्तमाही मामलात में है, लेकिन इन जनरल है कि ये अगर आए ए रसूल तेरे पास और इस्तिग़फ़ार करें, और इनकी सिफारिश में रसूल भी इस्तिग़फ़ार करें, वस्तग़फ़रा लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, कि सिर्फ हमारे अपने इस्तिग़फ़ार करने से काम बनने वाला नहीं है जब तक के हुज्जत खुदा की स्टैंप उस इस्तिग़फ़ार पे ना लगे। ठीक है, यानी कि जब तक वो उसको ऑथोराइज ना करें कि ये इस्तिग़फ़ार जेन्युइन है, तो खुदा की बारगाह में वो तवाबियत और रहीमियत नसीब नहीं होती।
मतलब इस वाक्य के अंदर वो आदमी आया तो सही, और ये आपने बात की थी लास्ट टाइम कि हुजूर ने भी उसको वो मना इस वजह से किया था क्योंकि जो है वो
उसके नफ्स की तब्दीली और तहव्वुल मुमकिन
है। तो ये नजर आ रहा है कि हुजूर ने उसको भेज दिया, मगर इसका मतलब ये
वो इलाज है, वो इलाज है, पैगंबर अकरम उसका इलाज कर रहे हैं,
उसका इलाज तो कर रहे हैं, बट उसके साथ वो उसकी इवन तो सामने ऐसा लग रहा है कि उसको मतलब उसकी मगफिरत कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह।
तो मगफिरत का मतलब यही तो है, इस्तिग़फ़ार को कहते हैं तलब मगफिरत, और जो कुछ भी खुदा या नुमाइंदे खुदा की तरफ से होता है वो अमली होता है, वो कोई लफ्जी चीज नहीं होती, हमेशा इस बात को जहन में रखें। यानी जैसे हम अक्सर ये बात करते हैं ना, और मैं पिछली दफ़ा भी ये बात कह रहा था कि हम लोग समझते हैं कि नबी और इमाम जो हैं वो किसी रोबोट का नाम है जो किसी खुदाई प्रोग्राम पे फीड करके चल रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, बल्कि खुदा का इंतखाब सलाहियत और मेयार के साथ होता है हमेशा। ठीक है, यानी खुदा अगर किसी इंसान को मुंतखब करता है तो मुंतखब करने का मतलब होता है, मुंतखब करने का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर वो सलाहियतें पैदा करता है, ये इंतखाब खुदा है, उसको उस मेयार पे ले आता है, उसको वो इल्हामात अता कर देता है कि तुम्हें क्या करना है, इसको कहते हैं इंतखाब खुदा। इंतखाब खुदा का मतलब ये नहीं कि खुदा की तरफ से कोई लेटर जारी हो रहा है कि इनको मैंने अप्रूव कर दिया। तो इसी तरीके से अगर नबी और इमाम के पास हम जाते हैं और वो हमारे किसी मसले का हल करते हैं तो वो हल अमली होता है, न कि थियोरेटिकल। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, ये बहुत अहम नुक्ता है कि अगर हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराना है तो हमें अपनी प्रॉब्लम को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, दरे विलायत पर लेके जाना पड़ेगा, और वहाँ से अगर अप्रूवल मिल जाता है तो खुदा की तरफ से भी तौबा और रहम का दरवाज़ा फिर खुला हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद जो अगला मरहला था वो ये था कि तौबा जो है वो इस चीज़ का नाम नहीं है कि एक इंसान अपने ज़बान से कहता रहे कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, एक इंसान अपनी ज़बान से कहता रहे कि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व तूब इलैह, बल्कि तौबा का मतलब ये होता है कि नफ्स जिन तारीकियों और ज़ुलुमात में फंस गया है, नफ्स के अंदर वो तब्दीली वाक़े हो कि उसकी तारीकी ख़त्म हो के नूरानियत पैदा हो उसमें। ये बात समझ में आ रही है, यानी नफ्स के अंदर खुद वो तब्दीली पैदा हो कि उसकी तारीकियां दूर हो जाएं और उसके अंदर रोशनी और नूर दाखिल हो जाए। तो ये वो वजह थी, और यानी ये बहुत इंस्ट्रक्टिव पॉइंट है, बहुत ही इंस्ट्रक्टिव पॉइंट है कि इसी वजह से रसूल खुदा ने उसको अपने पास से उठा दिया बगैर कुछ कहे हुए। क्यों? इसलिए कि आप ये देख रहे थे कि इसका नफ्स इतनी ज़्यादा तारीकी की दलदल में चला गया है कि अब एक गैर मामूली जो दिक्कत और मशक्कत और तौबा वाली है, यही उस दिक्कत उसको उस तारीकी से बाहर निकाल पाएगी। इसलिए आपने जाहिरन उसको मायूस कर दिया अपने आप से कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, बल्कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। तो ये वाली बात जो है ना, ये भी हमारे लिए बहुत अहम पॉइंट है कि जब हम तौबा और इस्तगफार की बात करते हैं तो इससे हमें समझ लेना चाहिए कि तौबा और इस्तगफार कहते किसको हैं, कि तौबा और इस्तगफार खुद नफ्स के तारीकी से निकल के नूरानियत की हालत में आने का नाम है। तौबा और इस्तगफार, यानी हम लोग ये समझते हैं ना कि जिस तरीके से कि जज साहब बैठे होते हैं कि उन्होंने एक ऑर्डर लिख दिया है कि ये रिलीज हो गया है, एक ऑर्डर लिख दिया है कि ये इम्प्रिजेंड हो गया है, एक ऑर्डर लिख दिया है कि इसको फांसी पे लटका दो, तो खुदा भी ऐसे ही काम कर रहा है और खुदा की बारगाह में भी हिसाब किताब ऐसे ही हो रहा है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आखिरत के हवाले से, ठीक है। तो यानी जो जाहिर है कि नुमाइंदा खुदा हुज्जत खुदा से बढ़ के कौन इन हकायक को जानता है, तो वो जब भी इलाज करते हैं या जब भी तरबियत करते हैं तो इसी उनवान से करते हैं, ठीक है। कि यानी उन्हें ये बात अच्छे तरीके से इस बात का इल्म है कि तब्दीली इंसान के अंदर आना है, उसका नाम तौबा है, उसका नाम इस्तग़फ़ार है, उसका नाम निजात है। तो उसके लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए उनको जो मुनासिब राह समझ में आती है वो उस रास्ते को अख्तियार करते हैं, ठीक है। तो रसूल खुदा ने उसको जाहिरन अपने आप से मायूस कर दिया ताकि उसकी तौबा कामिल हो सके, और तकरीबन 40, जो रिवायत में है कि 40 दिन का उसको बीच में टाइम पीरियड दिया, और फिर उसके बाद आयत आई उतरी कि अल्लाह ने उसको माफ़ किया या मगफरत कर दी। तो यानी इतने अरसे में कि जब उसने इंतहाई सख्ती, दुश्वारी, अजियत, तकलीफ़ उठाई अपनी तौबा की राह में, तो फिर उसके लिए माफ़ी आई, यानी कि उसमें वो तब्दीली उसके अंदर वाक़ हो गई, ठीक है। ये बात बहुत अहम समझने की हमारे, कि अगर हम अपनी ज़ात का जायज़ा लें और हमें ये बात समझ में आए कि हमारी तब्दीली नहीं आ रही, हमारे ज़ाहिरी बोलते रहने के बावजूद, अस्तग़फिरुल्लाह और अतूबो इलैह बोलने के बावजूद, तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। लफ्ज़ बोलना तौबा का नाम नहीं है, बल्कि तब्दीली आना जो है वो तौबा है, वो पलटना है। अच्छा, फिर आखिरी सवाल जो एक था कि जैसे अहले बैत पर जुल्म करने वाले, यानी कि अब एक सवाल उसमें ये था कि जी एक और नुकता ऐसे में आ रहा है रसूल खुदा के उससे, कि अगरचे हुज्जत खुदा तौबा के हुसूल में हमारी मदद करते हैं, लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन को लाना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। वो जबरदस्ती नफ्स को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, वो गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, वो हमें उस ट्रैक पे चढ़ा देंगे, उस पटरी पे लगा देंगे कि जहां पर हम अपने आप को सही कर सकते हैं। यानी जैसे मिसाल के तौर पर, कि एक मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ कि जनाबे हुर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए सुबह आशूर, और अशर शब आशूर नादिम वे सुबह आशूर आए और अपनी निदामत का इजहार किया, अब शर्मिंदगी का इजहार किया। अगर मिसाल के तौर पर इमाम हुसैन कह देते उनसे कि ठीक है, मैंने आपको माफ़ कर दिया और आप चले जाएं, आप यहां से निकल लें, तो मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि वो यजीद के फौज के उसके एक हिस्से के कमांडर थे, दस्ते के, हो सकता है वो भी उनसे तारुज ना करते, निकल जाते, वापस कूफे चले जाते। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस बात को प्रेफर किया कि वो शहीद हों, ठीक है। यानी कि जैसे वही मैं कह रहा था ना कि हमारे लिए ये बातें थोड़ी सी ऑड हमको लगती हैं, कि पिछली दफा हम किनका वाकया पढ़ रहे थे, हजरत जाफर तैयार का, कि जब उनकी एक्सेप्शनल क्वालिटी सामने आई तो रसूल खुदा ने उनको दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें दो पर दे जन्नत में परवास करने के लिए। उनको शायद उस वक्त समझ में नहीं आएगा दो पर का क्या मतलब है, लेकिन खुदा ने वो दो पर उनको कैसे दिए कि गजवा मौता में लश्कर के अलमदार होने के बाद उनके दोनों बाजू कटे और वो शहीद हुए। और उसके बाद रसूल खुदा ने फरमाया कि खुदा ने जाफर को उन दो बाजुओं के जगह पर दो पर इनायत किए हैं कि जिनके साथ वो बहिश्त में फरिश्तों के साथ परवाज करते हैं। तो बात समझ में आ रही कि उसका एक पूरा प्रोसेस है कि जिस प्रोसेस को हमें एग्जीक्यूट करना है। और हुज्जत खुदा जो है वो भी हकीकतन उन लोगों के साथ ही ये काम कर रहे होते हैं कि जिनके बारे में उनको पता होता है कि इनमें ये मजबूती है कि ये कर सकेंगे ये बात, वरना ज्यादातर लोग हमारे जैसे हैं, बोधे ज़ईफ के जो बस एक कोने में बैठ के और एक बस थोड़ी थोड़ी सी चीजों के साथ ही बस चल रहे होते हैं। वो जो जॉइंट लीप होती है ना कि इंसान यानी सही मानों में इस मादी और नासूती आलम से जो है मलकूती मकाम पे जम करे, वो फिर बहुत थोड़े से लोगों के बस की बात होती है। और उसमें ऐसे ही मेयार और किरदार चाहिए होते हैं कि जो इस तरीके से हिम्मत करें, जिनमें ये दम हो, जिनमें इस इन स्टेजेस को। तो इसमें ये बात भी समझ में आ रही है कि ये एग्जीक्यूशन हमारी है, गाइडेंस हेल्प सपोर्ट दुआ ये उनकी तरफ से, ठीक है। यानी कि कोई भी मेरे हिस्से का काम नहीं करता है, हत्ता ये कि नबी और इमाम भी नहीं। अगर आपको ये अचीव करना है तो ये जगह ये काम आपको लेना है। ये वैसे मिसाल के तौर पर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा ने जनाब जाफर तैयार को, जाफर इब्ने अबी तालिब को ये फजीलत अदा की और यकीनन मेरे चचा अब्बास का रुतबा उनसे हरगिज कम नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि जाफर जब जंगे मौता में, अच्छा दोनों की शहादत बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है, लेकिन जाहिर है कि यहाँ पर एक प्यास और तकलीफ और वो सब चीज़ें इजाफी थी, शदीद थी, जो वहाँ उन लोगों के साथ नहीं थी। तो आपने फरमाया कि अगर खुदा ने उनको वो दो पर दिए हैं तो यकीनन मेरे चचा अब्बास का रुतबा उनसे हरगिज कम नहीं है।
जब हुजूर ने पूछा था वो वाकया, तो उन्होंने बोला था कि बस मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी तरीके से।
देखिए इसमें मैं एक बात आपको बताऊं कि मुझ जैसा जाहिल आदमी जो अब मुझे फील होता है कि मैं अब अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम की तरफ करीब हो रहा हूँ, लास्ट चैप्टर मेरी ज़िंदगी का चल रहा है और मैं उस दरवाजे से नज़दीक हो रहा हूँ, एग्जिट डोर से, मुझे ये बात समझ में आने लगी है कि इस दुनिया से निकलने का सबसे अच्छा रास्ता शहादत है। बिस्तर पे पड़े रहना महीनों, दम घुट रहा है, चाकू छुरी चल रहे हैं आपके जिस्म पर, टेरेबल है। मतलब एक बिल्कुल ही एक कॉमन सेंस रखने वाला इंसान भी जो है ना वो यही कहता है कि इससे बहुत बहुत बेहतर है कि इंसान जो है वो किसी के हाथों से मक्तूल हो जाए जल्दी। मतलब बहुत, यानी पहला तो यही है कि अगर आप दोनों अमवात को कंपेयर करें ना तो ये आप कहें कि भाई ये बहुत आसान है। और फिर उस पर वो इजाफी है कि अगर आप मोमिन हैं, अगर आप मोमिन हैं, अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप उसको, तो यकीनन फिर रफ्ता रफ्ता इंसान को खुदा वो शऊर भी देता है कि भाई जो अगर हम खुदा से इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उस इजहार मोहब्बत का बेहतरीन तरीका यह है कि हम अपनी जान दें खुदा के रास्ते में या खुदा की राह में। तो ये खुद इंसान को ये बात समझ में आती है कि यानी, लेकिन उसमें सबसे पहली बात जो है ना वो ये है कि हमें मौत को सही पहचानना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम मौत को उस खौफजदा एक तरीके से देखें कि जो आमतौर से हम देखते हैं मौत को, हम उस तरीके से देख रहे हों कि ये कोई बहुत बड़ी मुसीबत है जो इंसान पे वारिद होती है, नाजिल होती है, तो डेफिनेटली फिर आदमी उससे वो किनारा कशी इख्तियार करता है। अब सूरह अनफाल की अभी मैं आयतें पढ़ रहा था, बिटवीन 60 एंड 70, या अय्युहन्नबी हर्रिज़ुल मुमिनीना अलल क़िताल, اے پیغمبر مومنین کو قتال پر آمادہ کرو، رغبت دلاؤ. اور اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے کہ یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے پیغمبر تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور مومنین میں سے وہ جو تمہارے رستے کی اتباع کرتے ہیں. یعنی یہ اصول زندگی خدا دے رہا ہے کہ یہ ایک بہترین راہ حیات ہے کہ انسان اگر اچھا، قتال کا مطلب ہمیشہ کوئی گن اور وہ والی نہیں ہوتی، بلکہ قتال جو زیادہ، اسی لیے حدیث میں ہمارے پاس یہ جملہ ہے اور بہت بزرگ علماء کی زبان سے سنا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، بظاہر بہت عجیب جملہ ہے کہ علماء کے قتل کی روشنائی شہید کے خون سے افضل ہے. اس کے اور اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں نا، عالم بھی قتال ہی کر رہا ہوتا ہے جو کسی انسان کے دل میں بسے ہوئے بتوں کو توڑے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو طاغوت نے لوگوں کے دماغوں پر اپنے جال بنے ہوئے ہیں، اس جال کو کھرچ کے نکالے، صاف کرے، کسی کے ہارٹ کو، مائنڈ کو کلین کرے، خدا کی طرف متوجہ کرے، یہ قتال افضل ہے. کیونکہ جس انسان کو آپ اس جگہ تک پہنچا دیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے امید ہے کہ وہ ابداً نجات یافتہ رہے گا. جبکہ اس قتال کے اندر بہرحال دوسری بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی فضیلت ہے. تو یہ جو امام زید بن حارثہ اور یہ سب لوگ، ان کا یہ میں آپ کو شاید پہلے سنا چکا ہوں کہ میں 91 میں جب ایران گیا تھا، تو بس وہ ایک عجیبی سی کیفیت تھی اس وقت کی نا، بالکل اس طریقے سے کہ جیسے مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا اس جگہ کا، ایک ان نون اسٹرینجر کی طرح سے، لیکن اس احساس کے ساتھ کہ اس جگہ میں بہت سارے خزانے ہیں کہ ایک بالکل اجنبی انسان ایک اجنبی زمین پر قدم رکھے خزانوں کا کھوج لگانے کے لیے، اور اللہ نے دیے الحمدللہ. تو اس میں بہرحال جب ہم قم میں تھے تو میں جانتے ہی نہیں تھا لوگوں کو ادھر ادھر پکڑ کے، تو کسی نے کہا کہ آغا تقی رحیمیان، نام سنا آپ نے ان کا؟ کافی انہیں جی سنا ہے نام، کوئٹہ کے ہیں اور ادھر ہزارہ کمیونٹی سے تعلق، لیکن بڑے بہت بہت زبردست عالم ہیں، گہرے عالم ہیں. تو وہ آتے ہیں، تو میں نے ان سے ایک دفعہ حرم میں ملاقات ہو گئی مغرب کی نماز کے بعد، تو ان سے میں نے درخواست کی کہ آپ آ جائے کریں. وہ بیچارے آتے بھی رہے ہے نا مسلسل 5-6 دن جب تک میں وہاں رہا، وہ مغرب کی نماز کے بعد آ جاتے تھے، میں کونے میں بیٹھ جاتے تھے. تو ان سے میں نے یہی زید بن حارثہ والا واقعہ ڈسکس کیا تھا اس وقت، اور میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جب خدا ان رستوں سے، یعنی کہ مثال کے طور پر شہادت مقتول فی سبیل اللہ ہونے کا رستہ ہے یا خدا کی محبت کا رستہ، یہ سب چیزیں ہیں، تو ہم یہ علم کے اتنی بیٹھ کے یہ حوضے کے علوم کیوں حاصل کریں؟ یعنی اتنا ٹائم کیوں لگائیں اس پہ؟ تو اس میں انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ دیکھیں، علم جو ہے نا آپ کو، وہ بڑی قیمتی بات ہے یہ، کہ علم آپ کو وہ تحمل اور وہ ظرف دیتا ہے جس میں آپ معارف الہی اور نورانیت کو سنبھال سکتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایک فضیلت آئی مثال کے طور پر قتال کی، شہادت کی اور باقی چیزوں کی، لیکن واقعاً اس کو اپنے اندر جذب کرنے اور سمونے کی صلاحیت، کہ آپ کے اندر وہ زرخیزی ہو کہ آپ ان اعلیٰ حقائق نورانی اور ملکوتی کو اپنے اندر جذب کر لیں، یہ آپ کو کون سی چیز دیتی ہے؟ علم، ٹھیک. تو اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جناب زید نے جب وہ بات ہوئی تو انہوں نے کیوں کہا کہ یا رسول اللہ میں شہید ہو جاؤں؟ تو اس کا ریزن انہوں نے یہ بتایا کہ اس لیے کہ انہوں نے جو حاصل کر لیا تھا اس کا سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا. تو انہوں نے یہ بات ہم کو سمجھائی کہ اس دنیا سے اگر نکلنا بھی چاہتے ہو، وہاں سے یہ جملہ نا میرے دماغ میں بہت بسا ہوا ہے، کہ اس دنیا سے اگر نکلنا بھی چاہتے ہو تو بہترین رستہ مقتول فی سبیل اللہ، یہ دروازہ ہے. یعنی اس دنیا سے نکلنے کے الگ الگ دروازے ہیں، तो ये बेस्ट वे है टू गेट आउट ऑफ हियर कि इंसान मकतूल फी सबीलिल्लाह हो जाए, बजाय इसके कि वो एड़ियां रगड़े और पड़ा रहे और दूसरों को भी परेशान करे और सब। बेहतरीन तरीका ये है कि कोई दुश्मन खुदा आए, दुश्मन दीन आए और इंसान को उसके घर भेज दे। तो ये बात वाजे हुई कि यानी कि जो उसमें छठा नुक्ता था कि वो हमारी हेल्प जरूर करते हैं, हमें गाइड करते हैं, लेकिन वी हैव टू टेक द वे, उसकी एग्जीक्यूशन उसका करना। जैसे ये सारी मिसालें मैंने आपको दी, हजरत जाफर, जनाब अब्बास, जनाब हुर, कि दे हैव टू टेक द चैलेंज और आपको उस पर आना पड़ेगा। सातवां सवाल जो था वो ये था कि अगर इसी तरीके से खुदा मिसाल के तौर पर गुनाह कबीरा के मुर्तकिब होने वालों को तौबा दे देता है और कर देता है, मगफरत हो सकती है, तो क्या अहले बैत पर जिन्होंने जिन लोगों ने कत्ल किया, अहले बैत के कत्ल किया, अहले बैत पर जुल्म किया, उनकी भी क्या तौबा कबूल हो सकती? तो जैसा मैंने कहा था कि थ्योरेटिकली यस बट प्रैक्टिकली नो, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अभी पीछे हमने जो बातें की थी वो ये उन्हीं से नतीजा निकल आएगा। पहली बात यह कि इंसान इवन गुनाह कबीरा कभी खुदा ना खास्ता नऊज़ुबिल्लाह मुर्तकिब हो जाए, लेकिन आमदन गुनाह का इर्तिकाब करना और खताअन गुनाह में मुब्तला हो जाना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। यानी जिस तरीके से कि उमर साद वाली जो बात है वो इस पर पूरी उतरती है कि उसने पूरा सोच के अपने इख्तियार से एक रास्ता लिया था। यानी ये नहीं हुआ था कि उसे किसी ने कुएं में धक्का दे दिया हो, कि वो पूरी रात टहलता रहा था और फिर उसके बाद उसको सुबह शैतान ने ये फूंका उसके दिमाग में कि अभी तुम ये काम कर लो और बाद में तौबा कर लेना, ठीक है। तो पहली चीज ये थी कि वो लोग के जिन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलाम पर मजालिम किए और ये सब इस किस्म के जिनायतों का इर्तिकाब किया, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आते थे कि उनसे खतान या वैसे ये गुनाह कबीरा सरजद हो गया। और उससे बड़ी वजह ये थी कि हमने क्या ये बात कही कि उस शख्स बहलोल ने किस रस्ते को अख्तियार किया कि उसकी तौहीद की मारिफत उसको दरे विलायत पे ले गई, ठीक है। लेकिन अगर कोई दरे विलायत के शजर कोई काट दे, यानी जहां से तुमको निजात मिलना है तुम उस पर ही छुरी चला दो, तो फिर तुम्हें कौन बचाएगा आगे, ठीक है। तो इस इन दो वजूहात की बिना पर जो अहले बैत या सादात या उस पर जिन लोगों ने ये मजालिम और ये सब किए तो उनके लिए ये दरवाजा तौबा और मगफरत का बंद हो गया, ठीक है। तो ये सात नुकात ऐसे थे कि जो जैसे मैंने जरूरी समझा कि जिसको क्लेरिफाई करना, वरना उस वाकये को अगर खाली वाकये को हम पढ़ लें तो बहुत सारे अहकाम फिर बाकी रह जाते हैं। जी इरफान भाई, आपका जो सवाल एड्रेस हुआ या आप कुछ और कहना चाह रहे हैं?
इसी के हवाले से था कि आपने कहा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसमें गुनाह की इंटेंसिटी के बाद उस ट्रांसफॉर्मेशन में उतनी हार्डशिप आती है, ये एक नतीजा निकाला था ना इस वाकये के बाद।
हाँ
जी, उस हार्डशिप को कौन असेस कर सकता है कि कितनी इंटेंसिटी थी गुनाह की, उस
हार्डशिप
के प्रोसेस से हम गुजरे ताकि हम
प्योरिफाई हो सकें। इसको एसेस कोई भी नहीं कर सकता, इसको एसेस सिर्फ उज्जत खुदा कर सकते हैं।
लेकिन डे टू डे लाइफ में हम किस तरह उसको उसका मदावा कर सकते?
देखें, इसका जैसे कुरान करीम ने कहा ना कि बलिल इंसानो अला नफ्सही बसीरतन, कि हर इंसान अपने नफ्स पर बाबसीरत है, यानी अपने नफ्स की हालत को जानता है। तो ये बात हमें ही पता चल सकती है और किसी और को नहीं, या खुदा को पे या फिर रसूल और इमाम को पता होगी कि हमारे अंदर किसी गलत काम ने कितना फसाद पैदा किया है और कितनी मेहनत या मशक्क़त या तौबा या इस्तग़फ़ार करने के बाद वो चीज़ ज़ाहिल हो रही है, और उसका मेयार आपके सामने है, ठीक है। मेयार मैं बहुत दफ़ा बयान कर चुका हूँ कि मेयार असल जो है ना वो नमाज है और इबादत की तौफीक और लज्जत है, ठीक है। इबादत کا انجام دینا اصل معیار نہیں ہے، عبادات کو پر لذت انجام دینا، یعنی کہ اب جس انسان کو عبادت کی حلاوت، مٹھاس، شیرینی محسوس ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہاں عبادت اتر رہی ہے، اندر عبادت قبول ہو رہی ہے، یعنی آپ کی عبادت، جیسے مولانا روم نے مثنوی میں اس چیز کو لکھا ہے ایک حکایت کے طور پر، کہ کسی شخص نے خدا سے فریاد کی کہ تو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا، کہ میں تجھے اتنا پکارتا ہوں، اتنا دعائیں اور یہ اور وہ اور سب یہ سب چیزیں، تو آپ تو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا، اور مجھے کیسے پتا کہ میری بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ تو یعنی اس نے شاید خواب دیکھا یا کسی بزرگ کو دیکھا، کہ انہوں نے کہا کہ ہر نیک عمل کے بعد دوسرے نیک عمل کی توفیق خود اس بات کی دلیل ہے کہ میں تم کو قبول کر رہا ہوں. یعنی نماز کے اندر اگر تمہیں لذت اور مٹھاس نصیب ہو رہی ہے تو یہ اپنی طرف سے نہیں آ رہی ہے، یہ ادھر سے آ رہی ہے. تو یہ معیار ہم کو پتا ہے کہ اگر ہم نے خدا نہ خواستہ کوئی گڑبڑ کام کر دیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ جس نے واقعا ہمارے اندر والے نظام کو خراب کر دیا، تو پھر وہ سب چیزیں نکل جاتی ہیں. یعنی پھر ہمیں نہ وہ لذت آتی ہے، نہ وہ مزہ آتا ہے، پھر صبح کی نماز میں اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، نماز شب کی تو توفیق ہی نکل جاتی ہے، پھر نمازوں کے اندر طبیعت اکتائی بھی سی ہوتی ہے، تلاوت قرآن کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، اور تلاوت قرآن میں جو واقعا مومن ہے اس مومن کے ساتھ ایک بہت خاص بات ہوتی ہے کہ تلاوت قرآن میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ قرآن آپ سے ہم کلام ہے، کچھ نہ کچھ قرآن ہر دفعہ آپ کو سکھا رہا ہے اضافی بات. یہ عجیب چیز ہوتی ہے، یعنی ہر وقت موقع تلاوت پر قرآن آپ کو ایک نئی بات سکھاتا ہے، وہ سب ہونا بند ہو جاتا ہے. تو اس سے انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، تو اب ہم دقت کریں. یعنی دقت کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ مثال کے طور پر صدقہ دیں، روزہ رکھیں، جو مشقت ہے، جو مشقتیں جو ریکمینڈیڈ ہیں، اضافی نافلہ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، صدقات دیں، کسی کی جا کے آگے بڑھ کے غیر ضروری طور سے، یعنی غیر معمولی طور سے اس کی پرابلم کو سالو کریں. یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہ مشقتیں ہیں کہ جو ہم اٹھائیں اس نیت سے کہ خدا میری توبہ کو قبول کر لے. تو یہ رستے ریکمینڈیڈ ہیں ہمارے پاس، لیکن اس کا پتہ ظاہر ہے کہ یا جیسے بعض اوقات عرفا کے واقعات میں ہیں کہ یہ واقعہ بہت مشہور ہے ان کا، مطلب بہت سارے عرفا نے اس کو بیان کیا، کہ جو تمام ان کے استاد تھے نا، آخوند حسین قلی حمدانی، ان کے پاس ایک شخص آیا تھا، ایک جوان آیا، اور یہی اسی راہ سلوک کے لیے انہوں نے اس کو سب سے پہلا نسخہ یہی بتایا تھا، توبہ کا، توبہ کر کے آؤ. چار دن بعد وہ نوجوان پلٹ کے ہے، تو باقی شاگردوں نے کہا ہم اس کو پہچان نہیں پائے تھے، پہچان میں نہیں آ رہا تھا، مطلب اس قدر. تو انہوں نے خود حسین قلی حمدانی نے کہا کہ اس نے جوان مردی کے ساتھ توبہ کی ہے، توبہ کا حق ادا کیا ہے. تو وہ پھر انسان کی اپنی ظرفیت پر ہے. یعنی میں ان کے حالات میں سن رہا تھا کہ شیخ عباس قوچانی، جو جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ مرزا علی قاضی کے جانشین ہیں، کیونکہ باقی سب لوگ تو ایران آ گئے تھے، نجف میں یہی رہے تھے اینڈ تک، انہوں نے اس راہ سلوک کو پانے کے لیے، خدا کی راہ کو پانے کے لیے پتہ نہیں کتنے سال مسلسل روزے رکھے، سوائے عید فطر اور عید قربان کے، کہ خدا مجھے رستہ دے. اب یہ اس کو کہتے ہیں جوان مردی والا قیام ہے نا، کہ اس انسان کی طلب کو خدا رد نہیں کرتا، ایسے انسان کی طلب، کہ یعنی کہ جس کو، جو انہوں نے، میں نے اس دن آپ کو ایک شعر بھی پڑھ کے سنایا تھا نا، جو انہوں نے کہا تھا کہ دست از طلب نہ دارم تا کام من برآید، मैं तलब से हाथ उठाने वाला नहीं हूं जब तक कि मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। या जान रसद बजाना या जान रेतन दरायत, या ये जान जो है ये जाना के पास पहुंच जाएगी या तन से बाहर निकल जाएगी। यानी मुझे वो जिस्म ही और उसमें वो जान ही नहीं चाहिए कि जो महबूब के हमराह ना हो। अब ये कयाम हर एक के बस की बात नहीं है, और उसके लिए अपना सब कुछ दे देना और फिर वाकयन अमलन इस किस्म के इकदाम करना। तो इस मेयार के अफराद हैं उनको जवाब मिलता है और बेहतरीन जवाब आता है। लेकिन हम लोग जो हैं कि वो हमारे मतलब 10 कदम दुनिया के अंदर फंसे हुए होते हैं, 1 कदम बमुश्किल आखिरत की तरफ उठता है, तो उसका तो कोई इतना खास नतीजा है नहीं। यानी कि हम लोग तो यूं समझ लें कि आवर फेट इज़ हैंगिंग ऑन मग़फ़िरत इलाही, कि खुदा ने माफ़ कर दिया कर दिया, वरना तो मामला मुश्किल हैं। ठीक है, तो तौबा को अगर हम और समेट दें तो वो इमाम अली अलैहिस्सलाम का जो जुमले हैं नहजुल बलागा में कि जिसमें आपने 6 बातें बयान की हैं, वो 6 बातें हैं आपके जहन में, कौन कौन सी हैं? सबसे पहली क्या है? निदामत, यानी कि जो इस शख्स के पास थी एहसास निदामत कि मैंने गलत काम किया है। ठीक है, और एहसास निदामत देखें, हमारे साथ सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है कि एक जेन्युइन एहसास निदामत भी नहीं पैदा होता, हम जेन्युइनली शर्मिंदा भी नहीं होते अपने गलत कामों पे। और मैंने एक मिसाल आप लोगों को दी थी ना पहले कि हम लोग अपनी मर्जी अपनी ज़बान से तो बहुत बोलते रहते हैं कि जी मैं बड़ा हकीर हूँ और मिस्कीन हूँ और बड़ा गुनाहगार हूँ, लेकिन दूसरा कोई बोल दे ना बहुत गुनाहगार हैं तो उससे फ़ौरन लड़ना शुरू हो जाएंगे कि आपने मुझे ये बोला कैसे। तो इसी से पता चल जाता है कि हम अपने अंदर हकीकतन अपने को क्या समझ रहे हैं और ऊपर से क्या शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सबसे पहला जो रुकन तौबा है वो निदामत और पशेमानी है, और उस पर आप बयान करते हैं कि ये निदामत जो है ना ये बहुत सारी चीज़ों का इलाज है। अरे ये जुमले इसलिए बहुत कीमती हैं कि ये उन लोगों के जुमले हैं कि जिन्होंने रास्ते को तय करके मंजिल को पाया है। ठीक है, इसलिए मैं भी इनको बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ इन जुमलों को, और इसीलिए आपको भी सुनाता हूँ कि ये उन लोगों के जुमले नहीं हैं कि जिन्होंने खाली लिखा और पढ़ा है। कि अभी मैं सुन रहा था आयतुल्ला जवादिया अमली का दर्स सूरह हूद की आयतों में, कि जहाँ पर कुरान के बारे में कि अगर तुम इस जैसी 10 सूरतें बना के लाओ शायद यही है तो सारे जिन इंस जमा हो जाएं, तो उसमें ये उन्होंने तफसीर बयान की कि हमारे ज़्यादातर उलमा ने कदीम उलमा ने ये लिखा है कि कुरान मोजज़ा है। और अगर आप ज़्यादातर उलमा से ये सुने शिया सुन्नी दोनों कि कुरान कैसे मौजदा है, किस एतबार से मौजदा है, तो वो कुरान की फसाहत व बलागत को उसका मौजदा करार देंगे। लेकिन उन्होंने इस पर तफसीलन बहस की और पूरी बहस की तकरीबन अलमीज़ान के हवाले से कि अल्लामा तबातबाई ने इस बात को कहा कि अगर मैंने उनका पहला आर्ग्यूमेंट ये था कि कुरान यहाँ पे कह रहा है कि तमाम जिन्नो इंस जमा हो जाएं तो इस जैसा कुरान नहीं बना के ला सकते। तो उन्होंने कहा कि अगर कुरान की जबान मौजजा है तो फिर कुरान गैर अरब दान के लिए तो मौजजा ही नहीं, लेकिन खुद कुरान चैलेंज दे रहा है सिर्फ इंसान नहीं जिनो इंस। तो इसका साफ मतलब है कि कुरान की जबान एक पहलू हो सकती है मौजज़ा होने का। और फिर उन्होंने उसके बहुत सारे मवारिद नकल किए कि कुरान के मारिफ, कुरान की अखलाकियात, कुरान की तालीमात वाला मतलब सारी बहुत। तो लेकिन फिर एक जुमला उसमें उन्होंने कहा कि शायद ये मीज़ान का ही जुमला दोहराया कि जमाल कुरान कल्ब इंसान पर हावी और हाकिम है। जमाल कुरान, अब ये जमाल कुरान महसूस करना हर एक के बस की बात नहीं है। जैसे कि बाज़ लोग होते हैं, बाज़ औक़ात एक ईरानी हैं जो अभी आजकल एग्जाइल में हैं, पहले काफ़ी बड़े बड़े उलमा के साथ उठने बैठने वाले वो साहब थे, तो वो लेकिन बहुत ज़्यादा उलमा पर बाज़ औक़ात आइम्मा पर तनकीद, और ये भी अब एक थोड़ा फैशन बन गया है कि ये आइम्मा को बढ़ा देते हैं और ये बात करते हैं। तो एक जुमला जो मेरे जहन में आया ना कि ये शख्स जो भी बात कर रहा है ना, ये खाली किताबी और लिखी हुई बात कर रहा है, इसको विलायत आइम्मा में से कुछ नसीब नहीं है। पूरी शिया किताबें सुन्नी किताबें पढ़ जाना, उनसे नतीजे निकालना, उस पर एनालिसिस करना, उस पर बहस करना, आप एक पढ़े लिखे शख्स हैं, लेकिन विलायत मासूमीन एक बिल्कुल अलग चीज़ है। इसी तरीके से कुरान की किरत और तिलावत और तजवीद और वो एक अलग बात है, जमाल कुरान को महसूस करना एक बिल्कुल अलग बात है। यानी इंसान अगर उसकी फील्ड में आ जाए, इमामत की फील्ड में आ जाए, तब विलायत आइम्मा को समझ सकता है। खाली ये पढ़ पढ़ के नहीं, ये वाकयात और तारीख से नहीं विलायत आइम्मा आती किसी को। तो ये जुमला उन्होंने बयान किया है कि जमाल कुरान कल्ब इंसान पर हाकिम है। और फिर उन्होंने कहा कि ये उस इंसान के अल्फाज नहीं है कि जिसने लिखा और पढ़ा है, ये उस इंसान के अल्फाज हैं जिसने बुलंदी से मारिफ को अपनी जात में वसूल किया है, उसका मजा लिया है, उसको चखा है और फिर दूसरों के लिए बयान किया है। इन्हें अल्लामा तबातबाई के लिए इन सब के आयतुल्लाह जवादी अमली के, आयतुल्लाह हसन ज़ादा अमली के, शहीद मुताहरी के यही जुमले हैं कि ये वो शख्स नहीं है कि जिसने पढ़ाया है, ये वो शख्स है कि जिसने राह को तय किया है, मंजिल तक पहुंचा है, देखा है, वहां से चीजों को जज्ब किया है और फिर आके दूसरों के सामने रखी है। तो यानी इसलिए इन हजरात के अल्फाज बहुत कीमती हैं कि ये वो लफ्ज नहीं है जो लिखत पढ़त से आते हैं या दिमाग की तेजी और तर्रारी से आ जाते हैं, ये वो लफ्ज नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो ये निदामत है, सबसे पहले मरहले पर अपने गुनाहों पर और अपने गलत काम पर निदामत, ये बहुत सारी चीजों का इलाज है कि इंसान अगर अपने गलत काम पर शर्मिंदगी हो जाए जेन्युइनली, तो बहुत सारे मसाइल उसके हल हो जाए। लासीयमा इवज व बदल निदम इंदल मौत व बादल मौत अस्त। और अगर खुदा ना खास्ता इस जिंदगी में इंसान नादिम नहीं हुआ, तो फिर निदामत है मौत के वक्त और मौत के बाद। इन्हें पशेमान तो होना है, पशेमानी तो है, लेकिन वो पशेमानी अगर दुनिया की जिंदगी में हो जाए, इंसान नादिम होके उसको रेक्टिफाई कर ले, बहुत बेहतर है। वरना ये पशेमानी क्या है, वक्त मौत है और बाद मौत है, और इंसान के तसव्वुर में नहीं आ सकता कि जो इंसान गैर ताइब हो, यानी जिसने अपनी पूरी जिंदगी तौबा की तरफ तवज्जो ना की हो, उसकी निदामत मौत के वक्त क्या आलम होगा उसका, कि किस किस्म की मुसीबत होगी। और जब इंसान यानी कि आखिरत में जो है ना, सबसे बड़ी अजियत इंसान के लिए क्या होगी, जो ये बयान करते हैं कि जब वो उस तमाम सआदत और बहजत और नूर और सल्तनत जो खुदा ने मोमिन के लिए रखी है, जब उसको देखेगा अपनी नजरों के सामने और अपने नफ्स की शकावत की बुनियाद पर अपने आप को उन सब से महरूम होता हुआ देखेगा। ठीक है ना, यानी कि देखें दुनिया की जिंदगी में एक एक शख्स है कि मिसाल के तौर पर जिसने अपनी पूरी जिंदगी स्लम एरियाज में गुजारी है, यानी आज कल की दुनिया की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो हु क्या रही, यही प्रॉब्लम तो हो गई है कि आज से 100-200 साल पहले बहुत सारे लोग गुर्बत के माहौल में ही पैदा होते थे, उसी में ही जिंदा रहते थे, उसी में ही मर जाते थे। तो उनके दिल में इतनी ना ख्वाहिशात जन्म लेती थी, ना इतने मसाइल होते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि गरीबी के आलम में पैदा होने वाला शख्स बहुत सारे इंसानों को अपने अरीब करीब बहुत ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते हुए देख रहा है, इसलिए वो अपनी उस हालत पर काने रहने को तैयार नहीं है। वो ये बात नहीं सोच रहा है कि मैं इसका अहल हूं या नहीं, अहल वहल की बात बाद में, उसको फौरी तौर पर उसके दिमाग में ये आ रहा है कि यह सब कुछ मेरे पास क्यों नहीं है। ठीक है, ये एक बात होती है। और इससे भी बड़ी मुसीबत ये कि अगर इंसान को ये पता हो कि अगर मैं ये काम करके आता तो ये सब कुछ मेरा होता, और सिर्फ इस नालायकी की वजह से ये सारी अजमत और ये सारे नूर नूरानियत सामने और मैं इससे महरूमियत। लेकिन उस या लैतनी का वही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं।
हम सीख सकते हैं कि आप कहते हैं काश मैं जल्दी आता, ट्रेन ना निकलती, वो काश की जो अंदर जो है वो
इसी बात को तो ये कह रहे हैं कि तसव्वुर में नहीं आ सकती कि इंसान नमी तवानत तसव्वुर नमायत, कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि जब अपनी नजरों के सामने देखेगा कि ये नूरानियत, ये करामत, ये फजीलत, ये शराफत, ये सब का सब मेरे नसीब में होती, मेरा हिस्सा होती, मेरा माल होती, और सिर्फ इस गफलत और इस नालायकी की वजह से जो है कि अपने गलतियों को दूर करने पे तवज्जो नहीं दी या इसरार किया या उस बारे में गफलत बरती, सिर्फ इस वजह से मैं उन सब से महरूम हो गया।
मौत के वक्त जो निदामत है उसका क्या है?
क्योंकि जैसे ही वक्त मौत आता है पर्दा हट जाता है ना, यानी इंसान जो है फिर वो अपने, जैसे पैगंबर अकरम ने फरमाया ना कि जब इंसान के लिए मौत आती है फ़कद काम क़यामतुहू, उसकी क़यामत उसके लिए कायम हो जाती है, यानी क़यामत के लिए वो कोई महशर का इंतज़ार करने की बात नहीं है, क़यामत इंसान की उसके नज़रों के सामने आ जाती है। वो सही है कि उसकी इंटेंसिटी और लेवल और क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी आगे, लेकिन क़यामत और उसकी हकीकत सामने आ जाती है, बिल्कुल। और बल्कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के अक़वाल के मुताबिक के रिजल्ट हर वक्त हमारे साथ है, यानी ऐसा नहीं है कि उसके लिए किसी को मौत के टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा, बल्कि वो लोग जो मुस्तैद हैं, वो लोग जो बेदार हैं, वो खुद हर वक्त अपनी जन्नत को, या नऊज़ुबिल्लाह कोई गलत चीज़ होती है तो जहन्नमी असरात को हर वक्त देख रहे होते हैं, और इसीलिए वो उसकी तौबा और इस्तिग़फ़ार और उसकी कोशिश एफर्ट कर रहे होते हैं। तो यानी कि जैसे क्या हमारे उर्दू ज़बान में भी शेर है ना कि क्या खूब सौदा नकद है साथ दे उस हाथ ले, ये कल युग नहीं कर युग है, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकद है इस हाथ दे उस हाथ ले। तो ये उसका ये उसका मतलब ये नहीं कि बैठे हुए सब कर रहे हैं जमा हो रहा है मरेंगे और वो सब नहीं, लेकिन बस होता ये है कि क्योंकि खुदा की मेहरबानी की वजह से तौबा का दरवाज़ा खुला रहता है बहुत अरसे तक, खुदा बंदे का इंतज़ार कर रहा होता है कि लौटे पलटे, इस वजह से तकलीफ़ नहीं आ रही होती या वो पकड़ नहीं हो रही होती, तो हम लोग उसका गलत मतलब लेते हैं हमेशा। तो पहला तो निदामत है जिसको इन्होंने तफसील के साथ बयान किया कि ये जो है ना कि अगर इंसान पहले मरहले पर अपने गलत काम पर नादिम ही नहीं होता तो फिर तो काम ख़त्म है, फिर तो आगे कुछ भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद क्या है कि इंसान जो इन्हें अज़्म बर तर्क आउद का क्या मतलब कि जो गलत काम किया कभी पलट के वहाँ नहीं जाऊँगा, कभी पलट के वहाँ नहीं जाऊँगा, उस पर अज़्म। तीसरी बात अदाए हुकूक मखलूकीन, इन लोगों के जो हुकूक हैं वो अदा करे, जो हुकूक यानी मफरूज़ यानी जो फ़र्ज थे हम पर, जिनमें हमने यानी जैसे कज़ा नमाज़ें, कज़ा रोज़े, ये तमाम चीज़ें, माली इबादात में जो गड़बड़ हुई जिनको तर्क कर दिया था, वो हुकूक अदा करे। और ये आखिरी जो बातें ना, ये इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहुत ये सख्त हैं कि वो गोश्त के जो गुनाहों से या गलत कामों के ज़रिए से जिस्म पर पैदा हुआ था उसको गुस्सा और अलम और रियाजतों के ज़रिए से उस खून उस गोश्त को पिघला दे, यहाँ तक कि जल्द जो है वो हड्डी से चिपक जाए, और उसके बाद अल्लाह की इताअत और हलाल से ताज़ा गोश्त उगाए अपने बदन पर। यानी ये बिल्कुल वही जो अभी मैंने कहा ना कि वो जो आयतुल्ला हुसैन कुली हमदानी जो शाह उनका यही हाल था। कि उसकी ये हालत 4 दिन में हो गई थी, यानी उस बंदे खुदा ने इस तरीके से तौबा की इन शरायत पर अमल किया था कि 4 दिन में जो दूसरे लोगों ने देखा तो उनकी पहचान में वो शख्स नहीं आया, 4 दिन में उसका ये हाल हो गया था कि जिल्द खाल जो है वो हड्डियों से लग गई थी। और फिर आप फरमाते हैं कि वो लज्जत जो तुमने गुनाहों से उठाई है उसके मुकाबले में उतनी ही जहमत और तकलीफ इताअत में बर्दाश्त करो। तो ये अरकान तौबा और इस्तिग़फ़ार कि इन मराहिल से गुजरो तो फिर उसके बाद कहो कि हाँ मैंने तौबा की। और इससे ठीक है, तो तौबा पर अब हमने अच्छे तरीके से बात कर ली और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अब क्लियर हो गया ना, यानी तौबा का स्कोप आपके जहन में बात आ गई कि तौबा जो है वो फ़कत माफ़ी मांगना या अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि तौबा हकीकतन वो पुल है, वो ब्रिज है जो आलम तारीख और आलम नूर के दरमियान है। ठीक है, इस ब्रिज का बनाना, इसको इस्टेब्लिश करना, इरेक्ट करना और मेंटेन करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अगर खुदा ना खास्ता कोई गलत काम करें, गड़बड़ काम करें तो फिर ये पुल जो है ना ये टूट जाएगा, शिकस्ता हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। और शयातीन हमेशा मुसलसल इसी चीज़ में लगे हुए हैं, इसी रास्ते पे लगे हुए हैं कि हमें इस तौबा, यानी कि अगर मैं ये जुमला कहूँ ना तो गलत नहीं है बात, कि शयातीन के सबसे बड़ी एफर्ट, यानी जो दो काम ऐसे हैं जो शैतान कभी नहीं चाहता कि आप करें, वो दो काम कौन से हैं? तौबा और सदका। क्योंकि हुजूर ने फरमाया ना, सदका बहुत आग को बुझाता है, जो नेक नियति के साथ खुदा की खातिर जब इंसान सदका करता है उसकी बड़ी, और जो एक हदीस है जो हालांकि उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड भी है, लेकिन इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जो इंसान अल्लाह के रास्ते में एक खुरमे का दाना देता है, हदिया करता है खुदा की राह में, खुदा उसकी परवरिश करता है, उसकी परवरिश करता है यहां तक कि वो कोहे उहद से बुजुर्गतर हो जाए। तो शैतान ना ये दो काम कभी नहीं करने देना चाहता मोमिन को, इसीलिए आप देखें कि सबसे ज्यादा जो ताखीर और गफलत होती है ना इंसान की, वो इन्हीं दो चीजों में होती है कि तौबा हाँ कर लेंगे, ठीक है अभी बहुत उम्र पड़ी है, अभी चल जाएगा, कल परसों अगले साल, जवानी बुढ़ापा डेढ़, यानी हर मुमकिन तरीके से वो पूरी एफर्ट करता है कि इंसान इस, और तौबा अब आप समझ रहे हैं ना कि तौबा यानी क़याम है, तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह नहीं है, तौबा ये है कि हकीकी निदामत हो, इंसान कामिलन उस बुराई से बाहर आए। फिर उसके बाद जितने, और आपको याद है मैंने फुज़ैल बिन अयाज़ वाला वाक़या आप लोगों को सुनाया था कि शहीद मुताहरी ने भी उसको लिखा है, और वो काफ़ी बुज़ुर्ग वो था, बाद में सूफी और आरिफ हुआ था, उसका वाक़या याद है कि वो जो डाके मारता था और फिर वो मुनक़लिब हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वाली बात याद है, असल चीज़ बाद में, वो तो ठीक है तायब हो गया, उसके बाद वो 20 साल तक उन तमाम लोगों को ढूंढ ढूंढ कर जिनका माल लूटा था उनको वापस करता रहा। 20 साल के बाद उसके जवान बेटे का इंतकाल हो गया, तब उसने ये बात कही कि आज मेरे दिल को इत्मीनान हुआ है कि खुदा ने मेरी तौबा कबूल कर ली है। यानी वही एक बात है कि अगर ये सब बातें सही हैं, अगर ये सब बातें सही हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा दीन जो है ना, मैं बहुत माजरत के साथ एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ, मजाक है। अगर दीनदारी या दीन का रास्ता या खुदाई या जिंदगी में बुलंद होने के ये रास्ते हैं तो फिर हम लोग मजाक कर रहे हैं। मतलब वी आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ अ कॉमेडी के सर ता पा दुनिया में गर्क है, उसमें से थोड़ा सा इधर उधर गर्दन निकाल के देख लेते हैं, कभी ये था सब ये कर लिया, था सब वो कर लिया, वो कर लिया, और समझ रहे हैं कि बस अगर ये बातें दुरुस्त हैं और वाकई दीन की राह यही है और इन्हें रसूल और इमाम और उन सब के साथ उनकी जिंदगियां, उनके मुजाहिदे, और अलग ये बात खुमैनी ने बहुत ज़्यादा जोर दे के कही भी है उसमें उनके दुरूस में, और मैं जिसका कल आपसे जिक्र कर रहा था कि उस दर्स में उन्होंने बहुत दफ़ा इस जुमले को दोहराया और अपने मतलब हुकूमती अरकान को सामने बाकायदा उनको कहा है कि आप लोग अगर ये काम नहीं करेंगे, इन्हें मानवियात पर मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप खुद महलाती मिजाज पैदा कर लेंगे, अगर आप लोग दुनिया के जर्क बर्क की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे, तो फिर आप फातिहा पढ़ लीजिए इस निज़ाम पे। कि दीन कभी भी महलों से नहीं उठा है, महलात से नहीं उठा है, दीन हमेशा झोंपड़ी और बोरिया नशीनों के कोशिश और काविश और मेहनत का नतीजा है। जहाँ जहाँ भी दीन आया है, दीन इस्टेब्लिश हुआ है, ये महलात और दुनिया का जर्क बर्क और मज़े और तफरी इनसे नहीं आया। तो ये उसूल जो है ना, ये हर जगह है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा अपने तमाम चीज़ों पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, यानी कम अज़ कम हम इतनी इस जगह पर तो आएँ कि अपनी ज़ात के अंदर से और अपने नफ्स के अंदर से जितना कुछ भी गैर खुदाई असरात है ना, उनको निकाल बार करें और वाकई अपने दिल का क़िबला जो है वो तौहीद और विलायत को बनाएं, उसकी हकीकी मोहब्बत को अपने अंदर जगह दें। और जितनी भी ज़्यादा हम, यानी कि हालांकि ये वो बात नहीं है कि उन्हें हमारी कुर्बानी की ज़रूरत है, हकीकतन अगर हम जो ज़हमत उठाते हैं वो अपने ही लिए उठाते हैं, किसी दूसरे को तो इंसान कुछ भी नहीं दे रहा होता। और ये जुमला वैसे ही फजूल है कि इस्लाम ख़तरे में, इस्लाम कभी भी ख़तरे में नहीं होता, जो भी ख़तरा होता है वो मुसलमानों को होता है, इस्लाम को कभी ख़तरा नहीं होता। इन्हें जैसे हम कहते हैं ना, आज़ादारी ख़तरे में, इमाम हुसैन ना आज़ादारी को कभी ख़तरा है ना इमाम हुसैन को ख़तरा है, प्रॉब्लम जितनी भी होती है वो मुसलमानों या शियों को होती है, तो उसकी हमें फ़िक्र करनी चाहिए। तो ये सारे मामलात हैं, और इसी चीज़ का ना, यानी इस पूरे जो एक डार्कनेस वाला लिविंग स्टाइल है, इसको ट्रांसफॉर्म कर देना उस नूरानी तर्ज ज़िंदगी और तर्ज हयात में, यही है तौबा का सफ़र और मग़फ़रत इलाही का सफ़र। ठीक, कोई बात अगर आप लोग इसमें लेकिन उससे पहले एक और बात का समझना बहुत जरूरी है कि जो मोमिन है वो दुनिया में रंजीदा और परेशान है, यानी रंजीदा और परेशान का मतलब मुजतरब नहीं है, बल्कि रंजीदा और परेशान का मतलब है कि ही इज़ मोर कंसर्न्ड, बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है और उसका दिल खुशी महसूस नहीं करता। ठीक है, यानी मोमिन का दिल कब खुशी महसूस करेगा, और ये सूरह फातिर के अंदर मौजूद है ये आयत पूरी, कि जन्नत में पहुंचने के बाद मोमिन कहेगा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्ना अल-हज़न, कि हम्द है खुदा के लिए कि जिसने आज मेरा रंज मुझसे दूर कर दिया। तो मोमिन जब तक उस अपनी डेस्टिनी तक नहीं पहुंच जाएगा तो उसके लिए रंज है, वो दुनिया में रंजीदा है। इन्हें रंजीदा होने का मतलब वो नहीं है कि लरज रहे हैं, वो नहीं, खौफ वाली वो सब बातें नहीं, लेकिन रंजीदा है क्योंकि उसको उसकी मंजिल नहीं मिल रही है, अपने मकाम तक नहीं पहुंचा। अच्छा, उसके बरक्स जितने भी दूसरी तरफ वाले लोग हैं, وہ یہاں بہت پرسکون مطمئن اور خوش ہیں, مترف. سورہ واقعہ میں بھی یہ جملہ موجود ہے, مترف یعنی مزے سے زندگی, کھانا پینا, تفریح, مال اڑانا, وسائل اسباب. اور آئی تھنک سورہ انشقاق میں ہی ہے کہ یعنی بڑے خوبصورت طریقے سے نا یہ دونوں گروہوں کو بالکل ایک دوسرے کے سائڈ بائی سائڈ بیان کیا ہے. اس چیز کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. میں بھی مجھے مل جاتی ہے تو میں آپ کو سناتا ہوں آیت. جی انشقاق میں, یا ایوہ الانسان انکا کادح الی ربک کدحا فملاقی. یہ سرنامہ یعنی ٹائٹل ہے. اے انسان, بے شک تو سخت مشقت اٹھانے والا ہے اپنے رب کی طرف, مشقت پر مشقت. فملاقی, یہاں تک کہ تو اس سے ملاقات کرے گا. ٹھیک ہے, یہ اصولی بیان ہے. فاما من اوتیا کتابہ بیمینہ, اس کے بعد نتیجہ یہاں پر یہ نکل رہا ہے کہ یعنی جب خدا سے ملاقات کا وقت آیا تو جس کی کتاب اس کے دائنے ہاتھ میں یا دائنے ہاتھ کی طرف سے دی گئی, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, تو اسے اس بات کی امید ہوگی کہ اب میرا حساب بہت آسان ہے جس کو کتاب اس کے دائیں ہاتھ سے ملے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اور وہ اپنے اہل کی طرف, اپنی فیملی کی طرف پلٹے گا انتہائی خوش, مسرور. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, اور جس کو اس کی کتاب کہاں سے دی گئی, ظہر پیٹ کو کہتے ہیں, پیٹ کے پیچھے سے. یہ کس قسم کا نشانی ہے؟ صحیح, کہ جو اپنے نام, اپنے حساب کتاب کو دیکھ کے بھاگ رہا ہو اور اس کو پیچھے سے پکڑ کے کہاں جا رہے ہو, یہ لو. ٹھیک ہے, وہ اما من اوتیا کتابہ ورا ظہرہ, پیچھے سے. فسوف یدعو ثبورا, تو ان قریب وہ بہت ساری موتوں کو, ڈیتھ کو پکارے گا. کاش میں مر جاتا, کاش میں مر جاؤں, کاش میں ختم ہو جاؤں, کاش میں اس انجام کو نہ دیکھوں. وَيَفْلَ سَعِيرًا, اور اس وقت وہ کس سے مل جائے گا؟ سعیر سے, یعنی جہنم سے. اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اس میں اور اس میں کمپیئر کریں, وہ آخرت میں اپنا کتاب لینے کے بعد اپنے اہل کی طرف مسرور پلٹے گا, یہ پہلے اپنے اہل میں مسرور زندگی گزار کے آیا ہے. اور سمجھ گیا؟ تو یہاں پر جو لوگ مست ہیں, مزے میں ہیں اپنے اہل میں, تو وہ اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں. تو یہی سے وہ یا لیتنی شروع ہوتی ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے گا نا, کاش میں نے اس وقت توجہ کر لی ہوتی, کاش میں اس وقت مستی میں نہیں ہوتا, کاش میں نے فلاں کی ولایت کو اختیار نہیں کیا ہوتا, کاش میں نے فلاں راہ کو ترک نہیں کیا ہوتا. یعنی اب جیسے یہ ہمارے پاس اس قسم کی بھی روایتیں ہیں کہ بعض لوگ آخرت میں انتہائی حسین کچھ لوگوں کو دیکھیں گے اور ان کے حسن سے متعجب ہو کے پوچھیں گے تم کون ہو, تو وہ کہیں گے تم مجھے نہیں پہچانتے, کون ہے, کون تھے وہ, میں وہ قرآن ہوں جس کو تم نے دنیا میں پڑھ کے بلا دیا. یعنی پڑھا, فراموش کر دیا, تلاوت کی بھول گئے, کیونکہ ان قرآن توجہ سے جذب ہوتا ہے نا, تدبر سے جذب ہوتا ہے, خالی قرأت سے تھوڑی. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو وہ یا لیتنی والی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, وہی ہے. تو بیسیکلی جو اس سورہ انشقاق کی آیت میں ہے کہ جو انسان دنیا کی لائف میں کسی بھی قسم کا سیٹسفیکشن فیل کرنا شروع کر دے, یہ اس جہنمی ہونے کی طرف کی علامات ہے. کہ جو دنیا کی زندگی میں سیٹسفائی ہو جائے کہ ہاں یہ تو مجھے بڑی اچھی جگہ مل گئی ہو, بہت اچھا, مزے, مسرور, یہ کام خراب ہے. क्योंकि जो मोमिन है उसको दुनिया की आप सारी नेमतें ला के दे दें उसका दिल रंजीदा है, क्योंकि उसकी तलब कुछ और है, उसकी चाहत कुछ और। नहीं, महजून है, महजून दोनों जुमले हैं कि महजून है और महजून नहीं है, दोनों बातें, खौफ है खौफ नहीं है। यानी अगर इंसान का हुज्न और खौफ खुदा के लिए काबिल तारीफ है, काबिल मदा है, अगर इंसान का हुज्न और खौफ दुनिया के लिए काबिल मजम्मत है,
सारी
यानी दुनिया और दुनिया की चीजें अगर इंसान को रंज में डाल रही हैं या खौफ में मुब्तला कर रही हैं, ये वाला खौफ मोमिन को नहीं होता। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, लेकिन खुदा के लिए रंज और खौफ वो बिल्कुल, वो तो इंतहाई काबिल तारीफ बात है। यानी इस बात का खौफ कि मैं अपने रब की नाफरमानी ना करूं, इस बात का खौफ कि उसकी मासीयत ना मुझसे ना सरजद हो जाए, इस बात का खौफ कि खुदा, इस बात का रंज कि खुदा का कुर्ब मुझे नसीब नहीं है, ये इंतहाई काबिल तारीफ हुज़्न और खौफ है।